वैधवला पुस्तक 15 लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहं नमो सीताम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् मुनिय परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरेहि सिद्धविज्जेहि दासन्त्वाभयवदी वसियौ स्वयदेवया मच्छम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगोऽभावियो सम्मम् आवहैनानसिद्धिम् नानफलम् चाविनिर्वाणम् तोऽसुवदेवयमिनमो तिक्कुत्तोपणमियूणभक्तिये ोच्छामि जहासुत्तम् चारित्तमोहस्य कवणवीम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुल तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इतिशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में जो चारित्र मोक्ष अपना का अर्थिकार अपना चल रहा है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 135 पर आ गए। 135 शपक जो पुष्टि करने वाला और पुष्टि वेदने वाला है, उस संबंधी ये जो 11 मूल गाथाएं चल रही थी अपनी, उसमें से भी 5वीं गाथा चल रही है अपनी। मूल गाथा कौन सी है? मूल गाथा 5वीं होनी चाहिए। हाँ, 5वीं मूल गाथा। 5वीं मूल गाथा में पूछा गया था पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था के साथ बंधा हुआ कर्म यहाँ है कि नहीं है, श्री वेद नपुसक वेद पुरुष वेद के साथ बंधा हुआ है कि नहीं है, समय मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व तो और समय के साथ बंधा हुआ है कि नहीं है, कौन से योग के साथ बंधा हुआ है, कौन से उपयोग के साथ बंधा हुआ है, और उसके आधार से ये अलग अलग भाष्य गाथाएं चल रही है। तो पर्याप्त अपर्याप्त के बारे में बताया था कि पर्याप्त अवस्था में बंधा हुआ भी है और अपर्याप्त अवस्था में भी, क्योंकि कर्म स्थिति प्रमाण काल में अनेक बार पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थाएं प्राप्त होती है। नियम रूप कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, तो मिथ्या तो में बंधा हुआ तो है ही है, सम्यक तो में बंधा हुआ भी है और नपुंसक वेद में बंधा हुआ है, ये तो नियम से है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की बात तो भजनीय बताए और समय मिथ्यात्व की भी भजनीय बताए। उसके बाद योग की बात बताई उन्होंने। योग में औदारिक योग औदारिक मिश्र में तो नियम रूप है और चार मन के चार वचन है, बाकी अन्य तो भजनीय बताए। फिर ज्ञानोपयोग की बात चाहिए, मत्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान में वो मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान भी ले लिया, यानी कुमति कुशत और सुमति सुश्रुत, ये तो नियम रूप से अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान तो ये भजनीय होता है। दर्शन उपयोग में भी ऐसा ही, चक्षु चक्षु है अवधि दर्शन भजनीय है। ख्याल में ही इतनी बात है। अब ये जो अभी हमने दर्शन संबंधी बताया है उसी की अभी संकीर्तना करने जा रहे हैं। 135 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन ऊपर बताते सूत्र में विहासा ऐसा, यानी ये जो भाष्य गाथा बताई थी उसकी विभाषा कर रहे हैं यहाँ पर। यह समुत्कीर्तना ही इसकी विभाषा है। क्या कहते हैं? गाथा ही उसकी विभाषा है, क्योंकि गाथा में वो तो समझाया है, उसी से स्पष्ट हो जाता है अर्थ, अलग से विभाषा करने की जरूरत नहीं है। यह समुद्र कीर्तना ही इस भाष्य गाथा की विभाषा रूप से प्रवृत्त है, इसलिए इस समय इसकी दूसरी विभाषा आरंभ नहीं की जाती, यह इसका भावार्थ है। कल हमने पढ़े थे ना गाथा, ऊपर हिंदी में अर्थ देख लो, देखो ऊपर से दूसरी लाइन, अनाकार चक्षु दर्शनोपयोग और अचक्षु दर्शनोपयोग में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय यानी नियम से, तथा अवधि दर्शनोपयोग में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय। अब नीचे से दूसरी लाइन पे आते हैं, इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा पांचवी मूल गाथा की विभाषा समाप्त करके अब यथावसर प्राप्त छठी मूल गाथा की विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अभी छठे नंबर की मूल गाथा चलेगी। एक तो छठी मूल गाथा, मूल गाथा, अब इससे आगे छठी मूल गाथा करना पाथा हुआ, मूल गाथा का अवतार करते हैं। इससे आगे छठी मूल गाथा की विभाषा करनी चाहिए। एक्चुअली यहां से ये वाह बतानी चाहिए, हमेशा वो समुद्र कीर्तना करनी चाहिए वगैरह वगैरह बात आती है, यहाँ विभाषा करनी चाहिए कहते। हम गाथा पढ़ेंगे ऊपर, किमले साए बद्धानी के सुखम मे सुवट्ट मानेन साधेन साधेन च लिंगेन च कम निखे तम्मी। किस लेशा में, किन कर्मों में, किस क्षेत्र और काल में वर्तमान जीव के द्वारा तथा साता असत जय आगता क्या हुआ है, साता असाता असा, अच्छा वो आ उधर हो गया। तो साता असाता और किस लिंग के साथ बद्ध करना बद्ध हुआ, बद्ध कर्म इस क्षपक के पाए जाते हैं, प्रश्न चिन्ह होना चाहिए यहाँ पर। फिर पढ़ते हैं इसको, किस लेशा में, किन कर्मों में, किस क्षेत्र और काल में वर्तमान जीव के द्वारा, यानी किस लेशा में वर्तमान जीव के द्वारा बंधा हुआ, किन कर्मों के साथ वर्तमान जीव के द्वारा बंधा हुआ, किस क्षेत्र में वर्तमान जीव के द्वारा बंधा हुआ, किस काल में वर्तमान जीव के द्वारा बंधा हुआ, तथा साता असाता और किस लिंग के साथ बद्ध कर्म इस क्षपक के पाए जाते हैं, ये तो प्रश्न हुए। अब इसका खुलासा करें, अभी क्षपक नहीं, अभी क्षपक में पूर्व में किस किस अवस्था में, जैसे हमने कौन सी गति में बंधे हुए देखा वैसे ही हान लेना, कब बंधा हुआ था, किस क्षेत्र में वो था जीव तब उसने बांधा था, इस तरह लेना। यह मूल सूत्र गाथा लेशा मार्गणा में, लेशा क्योंकि अन्य मार्गणा में कषाय मार्गणा में लिया था, चारों कषाय में वर्तमान जीवों ने बंधा हुआ है, ऐसे अभी लेशा में बताएंगे। एक इंद्रिय के असंख्यात भोग किए हैं तो तीन अशुभ लेशा तो होगी होगी, और अभी ये तीन शुभ भी होगी क्योंकि अभी ये तो चौथा क्या संयम करके ऊपर चढ़ा है यानी सभी जगह बंधे हुए होंगे, अभी हम देखेंगे। तो लेशा मार्गणा में शिल्प कर्म के भेदों में, किन कर्मों में ने कौन से कार्य करते हुए, शिल्प कर्म का अर्थ क्या होता है, यही होता है ना शिल्प कर्म, इन्हें ये जो नहीं 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 नाम कर्म नहीं, शिल्प कर्म कहा, इन्हें क्या कर रहा था, जो ऐसे ना षट कर्म जो बताया ना, असीम असी कृषि नहीं मालूम, देखो देखो जी हम मनुष्य लोग, मनुष्यों की बात करें, यानी अपना जीवन चलाने के लिए, जैसे धन कमाने के लिए ये जीव क्या क्या करता है? असी, असी का अर्थ समझते हैं, असी यानी तलवार, तलवार चला देने सैनिक हो जाता है, यानी जॉब करता है उसमें। मसी, मसी का अर्थ क्या होता है मालूम? मसी, मसी, असी यानी तलवार, मसी यानी स्याही, यानी लेखन कार्य, यानी अकाउंटिंग वगैरह और अन्य भी जो लेखन कार्य। पहले के जमाने में तो पुस्तकें भी लिखा करते थे और उसके लिए उनको धन दिया जाता। असी मसी, कृषि, कृषि यानी खेती, व्यापार, जिसको वाणिज्य भी कहेंगे। असी मसी कृषि वाणिज्य, शिल्प, और छठा क्या लगे? सबको मिलकर शिल्प बताया उन्होंने। एक यानी जो कलाएं जो अलग अलग होती, नृत्य है, संगीत है वगैरह। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और यही तो कुछ, यानी जो कलाएं जो होती है ना उसकी बात है। हम देखेंगे यहाँ कुछ लिखा होगा तो लिखा है क्या वहाँ पर? हाँ हाँ, केशु कमी से वर्तमान है। जीवन संचालन के उपायभूत क्रिया विशेष कृषि आदि कर्म है। ये छह कर्म बताए गए हैं। आदिनाथ के काल में क्या हुआ था? पहले तो भूभूमि थी, वहां तो कुछ काम वाम तो कुछ नहीं, बस कल्प वृक्षों से सभी उनकी जो जरूरियातें थी वो पूरी हो जाती थी। और फिर क्या हुआ, तीसरा काल खत्म होने को आया तो कल्प वृक्ष भी उनके तो इसको कहते ना कि वो तो मंद होने लगे, उनकी प्रभा भी कम हुई, उनका जो कार्य था वो भी स्केरिटी हो, बाद में वो उनका भी कार्य कम हुआ। तो अभी क्या करना, तो कुछ तो धन कमाना चाहिए। किस तरह से? तो खेती कैसे करने वो सिखाया। और फिर ये आने का अलग अलग विद्या होती है, शिल्प विद्या, विद्या में ये सारी विद्या लेना, गान विद्या, संगीत विद्या वगैरह, उससे शिल्प है। हाँ, शिल्प अलग लेना, कारागिरी। हाँ, और ये विद्याएं ने अलग अलग विद्याएं जो होती है, गायन है, नृत्य है, संगीत है, उसके एक छह नाम इसमें मिलेगी। अभी आपको देखना है तो असी मासी। हाँ हाँ, विद्या में वो गायन विद्या नृत्य वो सब 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 हो। हाँ, शूद्र वो तो वर्ण है, शूद्र वर्ण हो गया, क्षत्रिय नहीं, नहीं नहीं, उसको वर्ण कहते, चार वर्ण। हाँ, यानी उसके कौन सा जॉब करते हो उसके अनुसार वो चार। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, देखो यह मूल सूत्र गाथा लेशा मार्गणा में शिल्प कर्म के भेदों में वो तो विस्तार से समझाएंगे भी। साता और असाता के उदय में, यानी साता के उदय में बांधे हुए कर्म यहाँ मौजूद है कि असाता के उदय में, तो दोनों कहने पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि कोई कंटिन्यूस इतने लंबे काल तक कर्म स्थिति प्रमाण साता का उदय रहे कि असाता का, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में यहाँ पलटता है नियम से। मात्र वो नरक में, नरक सातवें नरक में पूरे 33 सागर और सहस्रार में 6 महीना ये हो सकता है, वहां साता और यहाँ असाता, अदरवाइज अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उदय पलटता ही है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, साता के उदय में क्या असाता के उदय में, तापस आदि लिंग ग्रहणों में, जो किस लिंग में पूछा था ना, किस लिंग के साथ बंधा हुआ था, यानी अन्य मिथ्यामतियों के लिंग को भी यहाँ ले लिया, तथा क्षेत्र और काल के भेदों में विद्यमान जीव के द्वारा किस क्षेत्र में, लोकाकाश के किस क्षेत्र में रहता था, कहाँ से आया होना चाहिए। एक राजू क्यों, अरे केंद्रीय में असंख्य भाव किए तो पूरे लोक में से कहीं से भी आएगा, पता नहीं अभी क्या क्या कहते हैं। अंतिम मिनिमम नहीं, मिनिमम भी असंख्यात एक इंद्रिय के भोग करके आया है। अभी देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। काल के भेदों में विद्यमान जी के द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों के शपक के संबंध से भजनीय और अभजनीय स्वरूप से संभोग की गवेषणा, यानी वो होते है कि नहीं होते, अभजीय हुआ है, अभजनीय करना। जी ने कहा कर ज और नी भजनीय अवतीर्ण हुए, क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमने अलग अलग देखे लेशा है कर्म, उसका यानी शिल्प कर्म का, उसको साता असाता के उदय में अन्य अन्य लिंगों में कब बंधा था, कहाँ किस क्षेत्र में जीव ने बांधा था कर्म, किस काल में बांधा था, ये सब बात बताई। बहुत जैसे अभी तो ये तो उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। किम लेशा है बद्धानी, ऐसा कहने पर छह प्रकार के लेशाओं में बद्ध कर्म क्या इस क्षपक के भजनीय है या भजनीय नहीं है, इस प्रकार इस पृच्छ का ने पृच्छा का प्रकृति में संबंध है। पृच्छ ने प्रश्न, इसलिए यह सूत्र का अवयव, यानी सूत्र का एक भाग हुआ ना, उसको अवयव कहा। लेशा मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है या अभजनीय है, इस बात की गवेषणा करने के लिए, गवेषणा करने ने ढूंढना, खोज करना, रिसर्च करना आपकी भाषा में, निबद्ध की गई मई हुआ की गई जाननी चाहिए। एक्सप्लोर आगे कहते केसु कमेशु वर्तमाने न, जीवन संचालन के उपायभूत क्रिया विशेष, उसको यहाँ कर्म कहा। कृषि आदि कर्म है, अभी हमने नाम लिया ना, तलवार चलाने, असी मसी, कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, या शिल्प और कला, मतलब मुझे एग्जैक्ट शब्द मालूम नहीं है, मगर शिल्प भी है उसमें, कला या विद्या भी लिखते हैं। उनमें से किन कर्मों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, तथा किन कर्मों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय नहीं है, यह पूछा इस वचन द्वारा की गई। उसके उत्तर तो आगे बताएंगे स्वयं। तथा इस सूत्र के साधेन असाधेन च इस अवयव द्वारा साता वेदनीय और असाता वेदनीय के उदय से युक्त जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है या अभजनीय है, यह मार्गणा उक्त पुच्छा द्वारा की गई जाननी चाहिए। मार्गणा ने खोज, अन्वेषण, वही बात है, मार्गणा का अर्थ ही खोज होती है। लिंगेन च ऐसा कहने पर तापस आदि लिंग ग्रहण लक्षण, लिंग ग्रहणों में विद्यमान जीव के द्वारा तापस ने जो अन्यमति तप आदि कुतप करते हैं उसकी बात है, पूर्व बुद्ध कर्म इस शपक के है या नहीं है, यह पूछा निर्देश किया गया है। यहाँ जो प्रश्न पूछे है उनका ये अर्थ बता रहे पहले में, पहले उसके जवाब उसके उत्तर तो बाद में देंगे। कमी लेसम में नहीं, कमी खेतम में चाहिए, है ना, कमी खेतम में, हाँ ऊपर गया, मैं तो मूल गाथा में देख रहे थे, खेत करना, लेस निकालना, खेत यानी क्षेत्र। कमी खेतम में ऐसा कहने पर ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और तिर्यक लोक के भेद से भेद को प्राप्त हुए क्षेत्र विशेषों में, क्षेत्र जब कहेंगे तो कौन से क्षेत्र हैं, लोकाकाश के जो मूल तो तीन भेद करते हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, तो किस क्षेत्र में विद्यमान जीव ने बंधे हुए कर्म यहाँ विद्यमान है, इसकी बात चल रही है। तो कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक के, तिर्यक लोक कहो या मध्यलोक कहो की बात है, तो तिर्यक लोक का अर्थ क्या होता है, तिर्यक यानी आड़ा, तिर्यंचा लोक नहीं है, तिर्यक लोक है। तिर्यंचा लोक तो पूरा लोक है, क्योंकि पूरे लोक में तिर्यंच है। यहाँ तिर्यक कह रहे, तिर्यंच नहीं, इन मध्य लोक। भेद से भेद को प्राप्त हुए क्षेत्र विशेषों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म भजनीय है या अभजनीय है, यह पृच्छा निर्दिष्ट की गई जाननी चाहिए। तथा इसी वचन के द्वारा देशामर्शक रूप से ग्रहण किए गए अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के भेद से भेद को प्राप्त हुए काल के विभागों में विद्यमान जीव के द्वारा जब काल पूछा है, तो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का भेद पूछा गया था। पूर्वबद्ध कर्म इस शपक के भजनीय है या अभजनीय है, इस पृच्छा निर्देश का संग्रह करना चाहिए। तथा पूर्व में जिन मार्गणाओं की अपेक्षा निर्देश कर आए हैं, उनसे शेष रही संयम आदि मार्गणाओं का संग्रह भी यहीं पर कर लेना चाहिए। बीच बीच वाली कोई यथा तथा बताई उन्होंने, तो जो जो 14 मार्गणाएं सब में इसकी पृच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार इस मूल गाथा में पृच्छा द्वारा सूचित हुए अर्थ विशेष की विभाषा करते हुए उक्त विषय में प्रतिबद्ध भाष्य गाथाओं की नियतता का उदाहरण करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं, यानी संख्या उनकी बताएंगे। ये छठी मूल गाथा में कितनी है भाष्य गाथाएं, तो कहते हैं 21 से दो भाष्य गाथा। इस छठी मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं। यह सूत्र सुगम है। तासिम समुत्कीर्तना, अब उनकी समुत्कीर्तना करते हैं। उन दोनों भाष्य गाथाओं की यथाक्रम से समुत्कीर्तना जाननी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यथाक्रम है, पहले और दूसरी क्रम से बताएंगे। अभी हम यहाँ गाथा पढ़ेंगे। विश्वासाद सादे च अभज्जाकम् असिप्पलिङ्गे च खेत्तमि च भज्जानि दुसमाविभागे अभज्जानि। उसका अर्थ देखते हैं। सभी लेशाओं में तथा साता और असाता में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है। मंजुबेन अभजनीय का अर्थ क्या है? नियम से है। असी आदि सभी कर्मों में, असी आदि लिया ना, सभी शिल्पों में, यहाँ शिल्प भी अलग लिया, ऊपर भी लिखा है क्या? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर तो केवल हाँ अभजा कम्म शिल्प लिंगे च, शिल्प कर्म में, यानी यहाँ शिल्पों में लिखा है, शिल्प कर्म चाहिए था। वहां तो शिल्प कर्म शिल्प कर्म कहा था ना, केसु कम्मेसु, और उसका अर्थ किया था शिल्प आदि कर्म, शिल्प कर्म कहा था उसका अर्थ। सभी लिंगों में और सभी क्षेत्रों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के क्या लिखा है? भजनीय है। यानी कोई विशिष्ट कर्म करने वाला ही क्षपक होगा, ये बात नहीं होती। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय हो गए वो तलवार चला गया, ऐसा भी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, तो भजनीय है। हाँ, क्षेत्र का भी भजनीय कहेंगे हम। मध्य लोक को मनुष्य की बात तथा काल के सभी विभागों में पूर्वबद्ध कर्म इस शपक के भजनीय है।
अलग से क्षेत्र नहीं लिया, सभी क्षेत्र।
हाँ, अब उसको विभाषा कहेंगे, देखेंगे तो आगे लिखा है ऊपर 139 पेज पर 379 पॉइंट खेतम ये बच्चानी दो तीन लोग के संचय को धो करके अधोलोक को धो गए लोग को भजनीय का। अब हम 138 पर आ गए हैं। अभी जो हमने गाथा पढ़ी उसका अर्थ पढ़ा, अब उसको यहाँ बता रहे हैं। 377 नंबर का पॉइंट, यह प्रथम भाष्य गाथा पूर्वोक्त सभी पृच्छाओं का निर्णय करने के लिए अवतीर्ण हुई है। मैंने सभी पृच्छाओं का एक ही गाथा में यहाँ जवाब दिया। अब इसमें आए हुए पदों के किंचित अर्थ की प्ररूपणा करेंगे। वह जैसे लेसा साद असाद एच ऐसा कहने पर छहो लेसाओं में और साता असाता वेदनी के उदयों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय नियम से, उक्त स्थानों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, उक्त स्थानों में, उक्त स्थान यानी छह लेशा और साता साता का उदय, इस क्षपक के अभजनीय पने का नियम किस कारण से है? उसका समाधान, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों में लेशा के भेदों का और साता असाता के उदय का अंतर्मूर्त में परिवर्तन का नियम देखा जाता है। क्या कहा? किसका? लेशा भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटती रहती है और साता का असाता का उदय भी एक एक अंतर्मूर्त में पलटता है। तथा अवस्थित लेशा वाले देव और नारकियों में प्रविष्ट हुए जीव की अपेक्षा अन्यथा भाव संभव है, इसी आशंका नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे देवों में तो वही की वही लेशा थी, परंतु हमने देखा था असंख्यात बहुत तो एक इंद्रिय के तो होने ही चाहिए। देव में जाए नहीं जाए, नारकी में जाके आए नहीं है, उसकी बात नहीं, जाए तो भी वहां असंख्यात भव हो गए। क्योंकि कर्मसिद्धि मात्र काल तक उन गतियों में अवस्थान असंभव होने से, यानी पूरी कर्म स्थिति तक देव नारकी मनुष्य इतना ही करता रहे तो ये असंभव है। तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होकर छह लेशाओं में परावर्तन करने वाले जीव के सब लेशाओं में संचित हुए कर्मों का क्षपक श्रेणी में अवश्य ही पाए जाने रूप नियम देखा जाता है। ये तो चौथे गुण स्थान तक तो छह लेशाओं में वो परिवर्तन होता रहता है, जैसे हमने क्रोधमान माया लोभ में देखा था ना, वैसे इनमें भी होता रहता है। विशेषार्थ, देव गति और नरक गति में यद्यपि अवस्थित लेशाएं पाई जाती है, अवस्थित का अर्थ जहाँ पीत है वह पीत ही चलेगी, जहाँ पद्म है वह पद्म ही चलेगी, नरकों में भी ऐसा ही, परंतु कर्म स्थिति प्रमाण काल के भीतर जो जीव इन गतियों में जन्म न लेकर मात्र तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ही रहे और अंत में उसी काल के भीतर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करे, यह नियम से संभव है। साथ ही इन गतियों में यथायोग्य छह लेशाएं नियम से पाई जाती है, क्योंकि इन गतियों में उनमें से प्रत्येक लेशा का काल ही अंतर्मूर्त है, इसलिए तो छह लेशाओं में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, यह निश्चित होता है। इसी न्याय से साता वेदनी और असाता वेदनी के उदय की अपेक्षा भी समझ लेना चाहिए। भले देव में से आया हो तो भी क्या हुआ, देव में जाने वाला तो मनुष्य तिर्यंच था, तो वहां भी उन्होंने बांधे थे, वहां से आने पर भी मनुष्य तिर्यंच में वहां भी लेशाओं का पलटना होगा। आगे पूछते हैं, कम्म सिप्पलिंगे च ऐसा कहने पर सब कर्मों में, सब शिल्पों में और सभी लिंग ग्रहणों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यह सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। यहाँ भी कर्म और शिल्प को अलग निकाला, सौवेशु कम्मेशु सौवेशु सिप्पेशु। शंका, इन स्थानों में बद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय किस कारण से है? क्योंकि इन स्थानों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अवश्य ही होते हैं, ऐसा नियम नहीं। शंका, इस क्षपक के निर्ग्रंथ लिंग अवश्य ही संभव देखा जाता है, संभव देखा जाने पाया जाता है, होना ही चाहिए। इसलिए सब लिंगों में संचित हुआ कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यह नियम नहीं घटित होता। तो कहते हैं ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विकारी वेश वाले पाखंडी लिंग ही यहाँ विवक्षित है। जैसे अपने क्षेत्र में मध्य लोक को भी लिया, वैसा यहाँ नहीं करना कहते। और जिन लिंग के ग्रहण में विकारी वेश का ग्रहण होता नहीं, क्योंकि वह यथा जात स्वरूप होता है, इसलिए सब परमतों द्वारा स्वीकृत पाखंडी लिंगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यह सिद्ध हुआ। यानी अन्य मतियों के वेश उसने लिए नहीं, लंबे काल तक एक इंद्रिय से आया है, मनुष्य होकर गया, या मनुष्य देव नारकी हुआ, परंतु ऐसे कोई वेशधारी नहीं हुआ। आगे कहते हैं क्षेत्रमीय भज्जानी दो, ऐसा कहने पर तिर्यक लोक के संचय को ध्रुव करके, ये बात महत्व की, यानी तिर्यक लोक में जब था तब बंधे हुए कर्मों को ध्रुव रखना, वो तो नियम से है। शेष अधोलोक और रुद्रलोक में विद्यमान जीव के संचित हुआ कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यही सूत्र वचन का अर्थ है। शंका, सूत्र में इस प्रकार के विशेष का निर्देश नहीं किया, अतः इस विशेष को जानना कैसे शक्य है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि व्याख्यान से इस प्रकार के विशेष का ज्ञान हो जाता है। अब आगे की पार्ट बताते हैं। समा विभागे अभज्जानी, ऐसा कहने पर समा विभाग का अर्थ काल का विभाग है। और वह उत्सर्पिण और अवसर्पिण और उत्सर्पिणी के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से एक एक काल सुषमा सुषमा आदि के भेद से छह प्रकार का है। ये सुषमा सुषमा नाम सुना है? किसको मालूम है? मंजू बेन। हाँ, पहला सुषमा सुषमा, फिर दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुखमा। हाँ, दुखमा सुखमा, हाँ दुखमा और दुखमा दुखमा, दुखमा कहो दुष्मा कहो सुखमा कहो या सुषमा कहो, एक ही बात। तो अवसर्पिणी के भी छह भेद किए, उत्सर्पिणी के भी छह भेद किए। यानी अपनी भाषा में पहला दूसरा तीसरा काल यानी भोग भूमि के है, चौथा है, फिर पांचवा छठा, उसी को ये सुषमा वगैरह नाम दिए। उन सब कालों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म नियम से है, इसलिए वो भजनीय नहीं है, यही सूत्र वचन का अर्थ है। शंका, इन कालों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय कैसे है? समाधान, क्योंकि कर्म स्थिति के भीतर अपने अंतर भेदों के साथ अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालों के परिवर्तन का नियम देखा जाता है। इसलिए इन कालों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। अब इसको और समझाएंगे। विभाषा, अब इस प्रथम भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। तम जहां, वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। च છસુ લેસાસુ સાદેન અસાદેન ચ બધાની અબજ્જાની. છ લેશાઓમે તથા સાતોદય એની સાતા વેદની કા ઉદય ઓર અસાતોદય કે સાથ પૂર્વબદ્ધ કર્મ ઇસ ક્ષપક કે અભજનીય હૈ ઇસકા અર્થ નિયમ સે હૈ. ઇન છ લેશાઓ મે તથા સાતોદય ઓર અસાતોદય મે પૂર્વબદ્ધ કર્મ ઇસ ક્ષપક કે નિયમ સે પાયે જાતે હૈ ક્યોંકિ ઉનકે ભજનીયપને મે કારણ નહીં પાયે જાતા. તિરિંજન મનુષ્ય દો લિયે ઓર ઉનમે તો તો છ લેશાઓ કા પરિવર્તન નિયમ સે હોતા હૈ. પરિણામો મે ભલે ફરક આતા હૈ પરંતુ ઉસકે સાથ બંધે હુએ કર્મ યહાં હૈ કે નહીં ઇતની. બિલકુલ પરિણામ મે ભી પરિવર્તન આતા હૈ. જો જો નયે કર્મ બાંધેગા ઉસમે ભી પરિવર્તન હોગા તો સમય સમય મે પરિણામ ચેન્જ હોતે. अब कहते हैं कम्म सिप्पे सु भज्जानी. कर्मों और शिल्पों में यहाँ में दो अलग अलग कर दिए. पूर्वबद्ध कर्म इस शपक के भजनी है वो बताएंगे स्वयं. कर्मों में और शिल्प कार्यों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस शपक के भजनीय है यह उक्त कथन का तात्पर्य है. यहाँ भजनीयपने में कारण सुगम है. अब वे कर्म कौन है जिनमें विद्यमान जीव के द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है यह कहा जाता है. ऐसी आशंका होने पर इन कर्मों का निर्देश करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं. हमें भी क्यूरियोसिटी है ना, आशंका, ये कौन से हो गए कर्म और कौन से हो गए शिल्प. तो कहते हैं कम्माणि जहां अंगार कम्मम वन्न कम्मम पौवद कम्मम मेदेशु कम्मेशु भज्जानि. कर्म यथा अंगार कर्म, वर्ण कर्म और पर्वत कर्म, इन कर्मों में बद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है. बताएंगे अब इस सूत्र में अंगार कर्म, अंगार कर्म ऐसा कहने पर अंगार कार्य को संपादन करने के लिए लकड़ी के जलाने रूप क्रिया को ग्रहण करना चाहिए. अंगार कार्य ने वो तो कोयला यानी वो अग्नि संबंधी जो कुछ लकड़ी के जलाने रूप क्रिया करते हैं. क्योंकि यहाँ काष्ठांगार से बने भोजन से बहुत से कर्म करों का जीवन उपलब्ध होता है. काष्ठांगार यानी लकड़ी की अग्नि. काष्ठांगार, काष्ठांगार से बने भोजन यानी अंगार कर्म यानी उसने लकड़ी के जलाए और वहां पर भोजन वगैरह बनाया उससे बहुत से कर्म करों का जीवन उपलब्ध होता है. अथवा अंगार कर्म से जो उसी प्रकार के अन्य अंगार निष्पन्न किए जाते हैं उनसे जो स्वर्ण का संस्कृत करना आदि व्यापार किया जाता है. देखो सोना जो मिलता है ना खदान में वो तो कैसा है, तो कहते हो तो स्वर्ण पाषाण. अभी उसको तो पकाया जाता है अग्नि में, तप किया जाता है, तो उसको भी अंगार कर्म कहेंगे. यानी जहाँ जहाँ अग्नि की जो अभी आजकल में ये तो लोहे के जो बड़े बड़े हैं ना भट्टी जिसको कहेंगे, जहाँ सारे धातु वगैरह शुद्ध करके बनाए जाते हैं वहाँ भी कितने बड़े बड़े उनके तो फर्नेसेस होते हैं, वो भी अंगार कर्म कहलाएगा. अभी वैसे तो ईंटें पकाते हैं. हाँ संस्कृत यानी संस्कार करना, स्वर्ण का संस्कार संस्कृत करना, संस्कारित करना, शुद्ध करना. हाँ कार्य करने वाला कर्म है. क्या कर्म करते हैं आप? कहते ना आप बिजनेस या आपका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय को यहाँ कर्म कहा. यानी अग्नि जहाँ जहाँ यूज होता है ऐसे जो कार्य उसको अंगार कर्म नाम दिया. अब वो जरा सोई ले लो उसमें ये स्वर्ण की ले लो. हाँ अब वर्ण कर्म से, अंगार कर्म वर्ण कर्म होते ना, वस्त्र का रंगना आदि चित्र कर्मों को ग्रहण करना चाहिए। हरताल हिंगुल आदि रंगों के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के रंगों द्वारा वस्त्र दीवाल आदि पर नाना प्रकार के चित्र कर्म संपादन द्वारा तथा कपास से बना हुआ वस्त्र और वृक्ष की छाल से बना हुआ वस्त्र आदि वस्त्र विशेष के रंगने द्वारा जीविका करने वाले बहुत प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ वो रंगा का काम आता है वो सब लेना, वो पेंटर सभी आजकल के ले लो, यानी भित्ति भी रंगाना लिया ना यहाँ पर, या चित्रकारिता जो है वो सब इसमें ले लो। पौवत कर्मों में ऐसा कहने पर गुफा का खोदना, अभी उस जमाने में तो ये बातें होती है अधिक तौर पर होती होगी, कितने मनुष्य वहाँ काम करते होंगे, गुफा का खोदना, शिला व स्तंभ का गढ़ना और तलगृह का निर्माण करना आदि शैल कर्म का ग्रहण करना चाहिए। पर्वत कर्म में शैल कर्म लिया उसको, तथा इसी प्रकार के मूसा कर्म, मूसा कर्म ने धातु गलाना, धातु गलाना समझते है, धातु गलाने ने मेल्ट करना, मूसा ने उसका सांचा वगैरह बनाते ना वो मूसा। और भी कर्म विशेष इस पद द्वारा देशामर्शक रूप से निर्दिष्ट किए गए जाने चाहिए। वो जमाने के जो मुख्य थे उसकी बात बताई है, अभी ये और कितने कितने कर्म नए नए उत्पन्न हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक का नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कर्म, एक इलेक्ट्रिक कर्म, नाम दे दो जितना चाहिए उतना। इसलिए कर्म के इन भेदों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय होते हैं, क्योंकि जो जीव क्षपक शैने पर चढ़ते हैं उन सबके ये कर्म अवश्य ही होते, ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी कोई 8 साल के बाद ही क्षपक शैने पर चढ़ा है, मनुष्य में आया ये एक इंद्रिय में से रहकर, कुछ नहीं करेगा, उसको जरूरत नहीं कुछ कार्य करने की। इस प्रकार यह सूत्र का समुच्चय अर्थ है, तथा इसी सूत्र द्वारा ही देशामर्शक भाव से शिल्प कर्म के भेद, पत्र छेदन आदि कर्मों का भी संग्रह करना चाहिए, क्योंकि हस्त की निपुणता का नाम ही शिल्प, ऐसा वचन। हाँ, हाथ हस्तकला जिसको कहते हैं। अभी वो कारीगरी, पेंटिंग्स, अभी अन्य अन्य शिल्प इसमें ले लेना। मैंने पहले बताया ना शिल्प और विद्या, विद्या में तो संगीत विद्या, नृत्य विद्या, गायन विद्या, वो सब उसमें आती है। अब कहते समव लिंगे सुच भज्जानी, सब लिंगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है। निर्ग्रंथ लिंग के अतिरिक्त शेष सब लिंग ग्रहणों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। जो क्षेत्र में हमने तिर्यक लोक को तो ध्रुव रखा है, तो यहाँ तो अन्य कौन कौन से अन्य की बात है। निर्ग्रंथ लिंग तो क्षपक श्रेणी के पूर्व ग्रहण किया ही है, वहां भी पूर्वबद्ध कर्म था, परंतु अन्य पाखंडी मतों की बात है यहाँ। निर्ग्रंथ लिंग यानी मुनि दीक्षा दिगंबर जैन, उसको छोड़कर अन्य कौन कौन से लिंग इसने धारण करने किए थे पूर्व में, तो ये कोई जरूरी नहीं है अन्य कोई किए थे, क्योंकि कर्मस्थिति प्रमाण काल में उसने अन्य कोई मत, अन्य कोई तापसी वगैरह नहीं बना था, एक इंद्रिय में से आया है और यहाँ तो उसने शंका, इसका क्या कारण है, क्योंकि तापस आदि विषयों का ग्रहण सब जीवों में संभव हो ऐसा नियम नहीं रह जाता, इसलिए इन लिंगों में पूर्वबद्ध कर्मों की वजनीयता सिद्ध हो जाती है। अब कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा आगे गए क्या, सूत्र आगे के पेज पर खेतम ही सिया अधोलोगिगम सिया उड्डलोगिगम नियमा तिरिय लोगिगम, क्षेत्र की अपेक्षा अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के साथ पाए जाते हैं। किंतु तिर्यक लोक में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। निर्ग्रंथ लिंग तो है ही है, क्योंकि जो नहीं हो उसके बिना कैसे होगा। अभी क्षपक है यानी वो तो निर्ग्रंथ लिंगधारी ही है। अन्य कौन कौन से वेश धारण किए थे अन्य मत के जो तापस आदि जो है उसकी बात है। यानी ऐसा भी है ना, अभी त्रस्पर्या में उसने लंबा काल बिताया।
पहले तो
निर्ग्रंथ वो बांधना नहीं है, उसको शायद उसने धारण किए थे उसमें भी बद्ध कर्म है उसके पूर्व के, उसका निषेध नहीं है। यानी ये तो पूर्व में धारण किया हो या नहीं किया, अभी तो किया ही है। पर अभी तो है ना, यानी वो तो नियम से। अन्य लिंग उसका कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि पूर्व में कोई तापसी था और फिर वो समय दृष्टि हो गया बाद में, उसके वो मिथ्या मान्यता छोड़ने पर है, ऐसे नहीं होगा। और अन्य लिंग से वो तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं, इसलिए उसका नियम नहीं है कहा, क्योंकि वो तो निर्ग्रंथ लिंग धारण करके ही चढ़ेगा। अब हम 142 पृष्ठ पर आ गए। अधोलोक के संबंध से और ऊर्ध्वलोक के संबंध से जो कर्म बंधन को प्राप्त होता है वही क्षपक के स्यात है और स्यात नहीं है, इसलिए भजनीय है। यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। परंतु तिर्यक लोक के संबंध से पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाया जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, वह कैसे? क्योंकि कर्मस्थिति संबंधी काल के भीतर ऊर्ध्वलोक में न जाकर अधोलोक में ही रहकर वहां से आए हुए इस क्षपक जीव के ऊर्ध्वलोक में किया गया संचय नहीं पाया जाता। बस वो ऊर्ध्वलोक में गया ही नहीं, अधोलोक में रहा था। इसी प्रकार अधोलोक में न जाकर कर्मस्थिति संबंधी काल के भीतर ऊर्ध्वलोक में ही रहकर वहां से आए हुए इस क्षपक जीव के अधोलोक में किया गया कर्मों का संचय इस क्षपक के क्षवक हुआ क्षपक के नहीं पाया जाता। इसलिए इन दोनों लोकों में बद्ध कर्मों की भजनीयता इस क्षपक के बन जाती है। अथवा ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का परिहार करके दोनों का निषेध किया, तिर्यक लोक में ही कर्मस्थिति का पालन करके आए हुए इस क्षपक के ऊर्ध्वलोक और अधोलोक उन दोनों में हुआ कर्म संचय इस क्षपक के नहीं पाया जाता, इसलिए भजनीय हो सकता हो जाता। परंतु तिर्यक लोक में हुआ संचय इस क्षपक के भजनीय नहीं है, क्योंकि कर्मस्थिति संबंधी काल के भीतर ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में समय के अविरोध पूर्वक रहे हुए जीव का तिर्यक लोक संबंधी क्षेत्र में गए बिना क्षपक श्रेणी पर आरोहण करना संभव नहीं है। फिर वो तो मनुष्य में तो आएगा ही, तभी तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। यहाँ पर तिर्यक लोक में हुए संचय को ध्रो करके यानी उसको तो फिक्स रखना और उसके साथ ऊर्ध्वलोक और अधोलोक लेना। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में हुए संचय के भजनीय पने के कारण चार भंग कहने चाहिए। चार भंग कैसे अश्विन भाई? हाँ हाँ, कैसे
है?
नहीं, चार भंग कहो ना।
अच्छा, एक तो
यानी अकेला तिर्यक लोक के तिर्यक प्लस ऊर्ध्व, तिर्यक प्लस अधो, तिर्यक प्लस उधो और अर्ध,
तीनों
अकेला तिर्यक लोक, तिर्यक प्लस ऊर्ध्व या तिर्यक प्लस अधो, या तीर्य वो अधो उर्ध्व सब ये चार होते हैं।
इसलिए क्यों चार बन गया?
इसलिए लिए कि कोई ऐसा भी जीव है ना पूरे लोक में से उसने बांध कराया, उर्ध्व लोक में भी अधो लोक में भी और मध्य लोक में भी, कोई ऐसा मात्र मध्य लोक में ही रहा है, वो नीचे ऊपर गया ही नहीं, वहां एक इंद्रियों को भी लेना उसी में, यहाँ अधो लोक में रहकर आया है, अकेले नार के नहीं लेना, त्रिवेंच रूप से एकेंद्र रूप से अधोलोक जो एरिया है वहीं पर रहा है, वो ऊपर गया ही नहीं था। स्थावर का तो पूरा लोक है परंतु उसने अधोलोक में ही जन्म मरण किया था अभी तक सर्वत्र। मध्य तो फिक्स है, मध्य से ही तो अधोलोक लिया। तो ये चार मंगल। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र आया है, अधोलोगम उद्धलोगिगम च शुद्धम नत्थी। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में हुआ संचय इस क्षपक के शुद्ध नहीं पाया जाता, अकेला वो नहीं रहेगा, मात्र ऊर्ध्वलोक का मात्र अधोलोक का। अधोलोक में हुआ संचय और ऊर्ध्वलोक में हुआ संचय क्षपक श्रेणी में भजनीय रूप से संभव है, अतः जिस काल में इस क्षपक जीव के संभव है उस काल में शुद्ध होकर नहीं प्राप्त होता, किंतु उक्त संचय तिर्यक लोक में हुए संचय के साथ सम्मिश्र होकर ही दिखाई देता है, यानी भजनीय होने पर भी मात्र ऊर्ध्व लोक से ही उसने पूर्वबद्ध कर्म किया, तिर्यक लोक का ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जघन्य रूप से भी संख्यातावली प्रमाण काल के भीतर तिर्यक लोक में जो संचय हुआ है वह मनुष्य पर्याय संबंधी संचित कर्म द्रव्य है, जो कि अवश्यम भावी होने से उस क्षपक के नियम से पाया जाता है। परंतु ये समझ में ही बात, तिर्यक लोग मनुष्य भी उसमें आ गए, यहाँ तो केवल ऊर्ध्व अधो और मध्य ऐसे ही तीन भेद किए, उसमें मनुष्य लोग या और छोटा लोग ऐसा कुछ नहीं भेद किए, बस तीन ही भेद किए, यानी लगातार एक इंद्रियों में ऊर्ध्व लोक में रहा अभी तक, तो अकेला ऊर्ध्व लोक का ही द्रव्य है और मध्य लोक का ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य में तो आना ही आना है उसको, तो मनुष्य में आने पर जो उसने बंधा हुआ कर्म है वो भी अभी यहाँ क्षपक के पाया जाता है, इसलिए शुद्ध नहीं प्योर ओनली ऊर्ध्वलोक का नहीं होगा। परंतु तिर्यक लोक में हुआ संचय क्षपक के शुद्ध भी पाया जाता है, मात्र तिर्यक लोक में ये भ्रमण किया है उसने और वहां उसने बांधा है कर्म, वो हो सकता है, क्योंकि कर्म स्थिति काल तक तिर्यक लोक में ही रहकर पुनः मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने से कर्म क्षय करने वाले जीव के स्पष्ट रूप से ही कर्म स्थिति के भीतर हुआ संचय पाया जाता है। वही तो बता रहे हैं, हाँ तिर्यक लोक बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं पूरे लोक में जाना है उसको, वो स्पर्शन क्षेत्र में जब हम गिनते तो अनादिकाल से कहाँ कहाँ जाके है उसकी, यहाँ तो मात्र कर्म स्थिति प्रमाण काल तक कहाँ रहा उसकी बात है, तो उसने एक इंद्रिय के भोग किए है तो तिर्यक लोक में ही किए, पृथ्वी हुआ अग्नि हुआ जो कुछ है, देव का भी किया तो तिर्यक लोक में हो सकता है कि नहीं, यंत्र है ज्योतिषी है वो सारे तिर्यक लोक में आते हैं, अधोलोक में भी आते हैं, यंत्र अधोलोक में भी रहते हैं, नहीं पृथ्वी के पहले पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के ऊपर भी रहते हैं, और पृथ्वी के यानी तल से जमीन से लेकर यानी भूमि से लेकर
अधोलोक में ऊपर सब आए ना देव,
देव तो ऊर्ध्वलोक में सारे स्वर्ग हैं, अब अधोलोक में सारे नरक है, परंतु देव कहाँ रहते हैं पूछेंगे, तो अधोलोक में कोई देव रहते कि नहीं रहते हैं? ये इतनी बड़ी पहली पृथ्वी है मोटी, इसके ऊपर हम रह रहे हैं, इसके ऊपर अभी वो सेंटर में। और ये पृथ्वी के अंदर क्या है, तीन भाग है, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। अब ये खर भाग में कौन रहते हैं, तो भवनवासी व्यंतर भी है, और यहाँ असुर कुमार और अन्य भी व्यंतर रहते हैं, और यहाँ यहाँ पहले नरक, उसके बिल यहाँ पर है नीचे के भाग में। यानी ये देव जाति जय भी है ना, भवनति के कुछ पार्ट है ना, भवनवासी व्यंतर यहाँ रहते हैं, तो ये देव भी देवगति के जीव है। अब ये मध्य लोक है, मध्य लोक ऐसा यहाँ है, और उसकी हाइट कितनी है, तो 1,00,000 योजन की, 1,00,000 योजन, यानी अभी 1,000 योजन नीचे है, परंतु 90,000 योजन 99,000 तो ऊपर है, और वो चूल्हे का सही है।
इतना तो मध्य लोक का एरिया है।
अब इसमें यंत्रों के हर 10,000 फीट के ऊपर उनके सतह पर उनके अलग अलग आवास पाए जाते हैं, उसको विमान नहीं कहेंगे, उनके रहने के ठिकाने जो कुछ है उसके मेरिडियंस अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी देव है, उसके अनेक पुर कहो या नगर कहो यहाँ बसे हुए,
जो लोग नहीं करेंगे
इसको तीर्यक लोग कहेंगे। ज्योतिषी है ना यहाँ पर सारे, ये तो लाख तक तो अंतर है, 790 से 900 तक 110 योजन का जो बीच वाला लेयर है, पट्टा है पूरा, उसमें ज्योतिषी विमान है, और उसमें असंख्य ज्योतिषी देव है। मेजोरिटी तो ज्योतिषी होंगे, सभी देवों में मेजोरिटी तो ज्योतिषी है जो मध्य लोक में रहते हैं। इन्हें मेजोरिटी देव कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में, मध्य लोक में, ऊपर है उनके विमान, नहीं ऐसी बात नहीं है।
मुझे लगा वो अधोलोक में ही है।
कौन से? नहीं नहीं, अरे वो तो ये स्वर्ग तो सारे ऊपर है, अभी सौधर्म ईशान, अभी ये जो त्रसनाली है उसमें ये डेढ़ राज्यों तक तो सौधर्म ईशान के है, फिर और डेढ़ राज्यों तक तो सनत कुमार महेंद्र के है, फिर एवरी हाफ हाफ राज्यों में तो ऊपर ऊपर के देव आते हैं, वो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ठ वगैरह सब। इन्हें प्योरली तिर्यक लोक में बंधा हुआ कर्म यहाँ पाया जाएगा, ये बात बता रही। देखो क्या कहते हैं, सेकंड लाइन फिर पढ़ती हूँ, 143। परंतु तिर्यक लोक में हुआ संचय इस क्षपक के शुद्ध भी पाया जाता है, क्योंकि कर्म स्थिति काल तक तिर्यक लोक में ही रहकर पुनः मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने से कर्म क्षय करने वाले जीव के स्पष्ट रूप से ही कर्म स्थिति के भीतर हुआ संचय पाया जाता है। यहाँ मनुष्य गति संबंधी संचय उससे पृथकभूत संभव है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र भी तिर्यक लोक के अंतर्भूत है, इसलिए यह उससे पृथक उपलब्ध नहीं होता। यानी मनुष्य क्षेत्र को अलग से नहीं कहना है, हमने तीन ही भेद किए हैं, मध्य ऊर्ध्व अधो। वो सब पीनी है चाहे उस सब पीनी है चाहे शुद्धम नक्की, बीच में दो लाइन देगी तुम। अब समा विभाग बज्जानी इस सूत्र अवयव का आश्रय कर काल के विभागों में पूर्वबद्ध कर्मों के भजनीय और अभजनीय पने की गवेषणा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। सूत्र क्या देखा, ओ सब पिनीय च उस सब पिनीय च शुद्धम नत्ती। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के शुद्ध नहीं पाए जाते, यानी मात्र अवसर्पिणी में बंधा हुआ है और उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कितना है तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और कर्म स्थिति कितनी है 40 कोड़ा कोड़ी सागर, या मिथ्यात्व को ले लो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, देखो, क्योंकि कर्म सिद्धि के भीतर इन दोनों कालों के परावर्तन का नियम देखा जाता है, इसलिए इन्हें अवसर्पिणी भी और उत्सर्पिणी भी बीत जाती है। इसलिए अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के भीतर परस्पर मिलित होकर ही इस क्षपक के प्राप्त होता है। क्या पूर्वबद्ध कर्म? शुद्ध स्वरूप होकर प्राप्त नहीं होता, यही सूत्र का भावार्थ है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा शुद्ध ने प्योर मात्र बस अवसर्पिणी बंधा है और उसके पहले वाला कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा प्रथम भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा संपन्न करके अब यथावसर प्राप्त दूसरी भाष्य गाथा की विभाषा करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। पहले एक बार बताया था कि ये बात आगे छठी गाथा की दूसरी भाष्य गाथा में आने वाली है, अनुभाग स्थिति संबंधी। अभी देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। ये तो सारी जो क्वेरी थे वो एक ही गाथा में उन्होंने उसका प्रथम भाष्य गाथा में बता दिया उसका उत्तर। अब कहते एक तो विद्याय भाषगाहाय समुत्कीर्तना, यह दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना चाहिए। यह सूत्र सुगम है। अब ऊपर गाथा पढ़ेंगे। एदानि पूर्वबद्धानि कौन्ति सर्वेषु ठिदि विशेषेषु सर्वेषु चानुभागेषु नियमसा सर्वकीर्तिषु। ये पूर्वबद्ध कर्म स्थिति के सब भेदों में, अब ये जो वहां बंदे थे अलग अलग बताए थे, तो कहते सब निषेकों में पाए जाएंगे, सब अनुभागों में और सब कृष्टियों में नियम से पाए जाते हैं। नियम बताया
अनुभाग शब्द पीछे गया, क्योंकि जो अभी संसार अवस्था में जो अनुभाग पाता है उसका तो वो अनुभाग तो वहाँ पे नहीं पाया।
जहाँ जितना अनुभाग यहाँ है उन सब अनुभागों
ये तो पूर्वबद्ध कर्म के
अभी जितने अनुभाग यहाँ है अलग अलग, इसका अर्थ क्या है? सब निषेकों का अर्थ क्या है? सब स्थितियों में पाए जाते क्या? इसका मुझे अर्थ बताओ।
सब स्थितियों में जो निषेकों में जो परमाणु थे वो अभी दृष्टियों में,
ऐसा कहाँ है? अभी कितना कर्म जितना पड़ा है अभी क्षपक का, नाम मत दे उसको, जितना पड़ा है इन सभी स्थितियों में पूर्वबद्ध कर्म है कि नहीं है? आप कहेंगे यहाँ 40 कोड़ा कोड़ी कहाँ पड़ा है ख्याल में? वैसे यहाँ जो कोई निश्चय अनुभाग पड़े हैं उन सभी अनुभागों में ये है, इन एक एक निषेक में सभी अनुभाग है कि नहीं? तो एक निषेक में केवल मंद अनुभाग वाले ही पूर्वबद्ध है या तीव्र अनुभाग वाले ही पूर्वबद्ध है, ऐसा तो नहीं है। सभी अनुभागों में पड़े हैं और अनुभागों की अभी कृष्टि बनी है, तो सभी कृष्टियों में पड़े हैं। खैर मेरी बात, निषेकों के लिए तो ये अलग रूल और अनुभाग के लिए अलग रूल लगा रहे। अच्छा है ना, वो तो क्या कि बराबर परीक्षा करके ग्रहण कर लास्ट के। तो बता देखो, यह दूसरी भाष्य गाथा कदिसु किट्टीसु च ठिदिसु इस चौथी मूल गाथा के अंतिम चरण का अवलंबन करके तीन मूल गाथाओं द्वारा निर्दिष्ट किए गए अभजनीय पूर्वबद्ध कर्म प्रदेशों के वो भजन यानी नियम रूप, जहाँ जहाँ जिसका जिसका जिस कषाय में जिस किस लेशा में, तो जो जो नियम बताए थे सब, तो कहते वो जो जो अभोजनीय पूर्वबद्ध कर्म प्रदेशों के स्थिति और अनुभागों में अवस्थान क्रम का ज्ञान कराने के लिए अवतीर्ण हुए। अब जो जो बताए यहाँ नियम से होते हैं, तो सभी निषेकों में हो गए, सभी अनुभागों में हो गए, सभी कृष्टियों में हो गए। वह जैसे एदानी पूर्वबद्धानी, अर्थात जो ये पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के तीन मूल गाथाओं में अभजनीय कहे हैं, उन्हें नियम सायण निश्चय से ही इस क्षपक के सब स्थिति विशेषों में जानना चाहिए। इस क्षपक के स्थिति विशेष का अर्थ क्या है? इस क्षपक ये जो अभी कृष्टिकरण कृष्टि वेदक करने वाला जो जीव है, इसके जो स्थितियां है वो इसकी सब स्थितियां है। क्योंकि सभी कर्मों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक स्थिति के सभी भेदों में उनका अवस्थान देखा जाता है। सर्वेषु च अनुभागेषु ऐसा कहने पर चारों संवरणों की सदृश धन वाली सभी कृष्टियों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अभी कृष्टि करने वाला है और वेदने वाला है, तो यहाँ जो जो उसके अनुभाग जिस रूप में पड़े हैं, अलग अलग विशिष्ट अनुभाग वाले अनंत अनंत परमाणु हैं, तो उन सभी में ये पूर्वबद्ध कर्म पाए जाते हैं। सदृश यानी समान धन वाली है ने? कृष्टि किसको कहेंगे? जिसमें जिसमें समान अनुभाग है, अविभाग प्रतिच्छेद। सदृश धन वाले ने समान अनुभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु, उसी को यहाँ वर्गणा भी कहा, उसी को यहाँ कृष्टि के लिए भी वर्गणा विशेष नाम दिया था, उसको वर्गणा विशेषार्थ। यहाँ सब स्थिति ऐसा कहने से प्रथम और द्वितीय स्थिति का ग्रहण किया गया है, क्योंकि जब जिस कषाय का उदय रहता है तब उसकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति नियम से होती है। अतः जितने भी पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय हैं, वे इस क्षपक के प्रत्येक कषाय की सभी संभव स्थितियों में पाए जाते हैं। जो नियम रूप जो कर्म पूर्वबद्ध पाए जाते हैं, ऐसा अभी तक हम पढ़ के आए हैं, तो जिस कषाय की जितनी स्थितियां पाई जाती है, संभव स्थितियां ने, अभी क्रोध का उदय है तो क्रोध का तो प्रथम स्थिति में भी है, द्वितीय स्थिति में भी, और मान माया लोभ का द्वितीय स्थिति में है, तो उसके वहां पर सभी निषेकों में पाए गए। तथा इस क्षपक के कृष्टिकरण की क्रिया संपन्न होने पर जितना भी संभव संज्वलन कषायों का अनुभाग अवशिष्ट रहता है, यानी बाकी रहता है यहाँ पर, वह इस क्षपक के कृष्टि रूप में ही पाया जाता है। यानी अभी इस पोजीशन पर बात करेंगे हम, तो ये सारे स्पर्धकों को, अपूर्व स्पर्धकों को और पूर्व स्पर्धकों को कृष्टि रूप परिणाम आया। यही कारण है कि यहाँ पर सर्वेषु च अनुभागेषु इस पद का स्पष्टीकरण करते हुए उसे सदृश धन वाली कृष्टियों स्वरूप ही कहा गया है। तात्पर्य है कि पूर्वबद्ध कर्मों का अभजनीय स्वरूप से जो अनुभाग अवशिष्ट रहता है, वह इस क्षपक के संभव सभी कृष्टियों में पाया जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये बात ख्याल में आई? अभी कृष्टियां बनी है, एक एक कृष्णि में अनंत अनंत परमाणु है, तो ऐसे सभी कृष्टियों में पूर्वबद्ध कर्म जो नियम रूप कर्म बताए थे, वो तो सभी कृष्टियों में पाए जाएंगे, यानी सभी निषेकों के सभी कृष्टियों। यहां सर्वत्र इतना विशेष जानना चाहिए कि प्रकृति में क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जीव विवक्षित हुआ है, इसलिए 12 ये संग्रह पुष्टियां और उनकी अंतर पुष्टियां पाई जाती हैं। किंतु यदि क्रोध संज्वलन को छोड़कर मानादि किसी एक कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जीव विवक्षित हो तो उसकी अपेक्षा उस क्षपक के जितनी संग्रह अंतर पुष्टियां संभव हो उस अपेक्षा से निर्णय लेना चाहिए। मान के उदय से चढ़ेगा तो 9 होगी, माया के उदय से तो 6 होगी। यहाँ जो यह विशेष सूचना की गई है वह इस क्षपक के पूर्वबद्ध कर्मों के भजनीय और अभजनीय स्वरूप से विचार करते समय सर्वत्र समझ लेनी चाहिए। सर्वकृतिस्व ऐसा कहने पर सब संग्रह पुष्टियों का और उनके अवयव पुष्टियों का एक पंक्ति रूप से ग्रहण करना चाहिए। एक सिंगल लाइन में उसको सबको रखना। हाँ, आड़ा देखेंगे तो प्रत्येक निषेक में है और उसके अलग सी रचना दिखाएंगे तो एक पंक्ति कर नीचे से ऊपर तक एक पंक्ति कर ली सब, और उसी को निषेक में बताने तो हर एक निषेक में इसे बताना। इससे क्रोधादि संज्वलन संबंधी एक एक पुष्टि की अनंत सदृश धर्म वाली पुष्टियां संभव होने पर उनमें लोभ संज्वलन की सबसे जघन्य पुष्टि से लेकर क्रोध संज्वलन की सबसे उत्कृष्ट पुष्टि तक की सब पुष्टियों संबंधी सदृश धन वाली पुष्टियों के भीतर ये अभजनीय स्वरूप कहे गए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। ये उक्त कथन का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं? एक एक संज्वलन में क्रोध में मान में माया में लो अपना अपना संग्रह पुष्टियां जो बनाई उसने हर एक अपनी अपनी 3 और उसमें अंतर पुष्टियां अनंत अनंत बने तो एक एक पुष्टि में समान धन वाले ऐसे कितने हैं? तो कितने अनंत है, अनंत सदृश धन वाली पुष्टियां। पुष्टियां भी अनंत है और एक एक पुष्टि में परमाणु भी अनंत है। ये बात सही व्याख्या में उनमें लोभ संज्वलन की सबसे जघन्य पुष्टि से लेकर क्रोध संज्वलन की सबसे उत्कृष्ट पुष्टि तक की सब पुष्टियों संबंधी सदृश धन वाले पुष्टियों के भीतर ये अभजनीय स्वरूप कहे गए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। यह कीर्तन का तात्पर्य यानी उस प्रत्येक पुष्टि में पूर्वबद्ध जो भजनीय रूप से अभजनीय के ना नियम रूप से जो नियम रूप से है प्रत्येक निषेक में तो है ही है। एक एक निषेक में जो अनंत पुष्टि बनी है उस हर एक पुष्टि में वो नियम रूप कर्म पाए जाएंगे। ये बात बताना चाहते हैं। ख्याल में ये बात है? अश्विन भाई का प्रश्न था ना। अथवा सब पुष्टियों में जो अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप से विद्यमान है उन सब में ही सदृश धन रूप से अभजनीय पूर्वबद्ध कर्म प्रदेश पाए जाते हैं, ऐसा इस सूत्र का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तथा इसी सूत्र से देशामर्शक भाव से भजनीय कर्म प्रदेशों का भी संभव पक्ष के स्वीकार करने पर एक परमाणु से लेकर एक एक अधिक परमाणु क्रम से सब स्थिति विशेषों में सब अनुभागों में और सब पुष्टियों में अवस्थान संभव है यह मार्गणा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो बताया जो नियम रूप से पाए जाते हैं वो कहाँ है, सब स्थितियों में निषेकों में है, सब अनुभागों में नहीं सब पुष्टियों में, क्योंकि अभी अनुभाग तो पुष्टि रूप से पड़ा है। इतना ही नहीं कहते हैं, परंतु जो भजनीय है ना, भजनीय का अर्थ क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, परंतु भजनीय में दो पक्ष, एक तो संभव और एक असंभव। यानी भजनीय में हम देखे देवगति में बांधे हुए कर्म हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अब नहीं हो सकते तो उसका होने का सवाल नहीं। ये यदि कहेंगे हो सकते हैं तो उसमें सभी में कैसे एक एक परमाणु। देखो यहाँ क्या क्या संभव पक्ष के स्वीकार करने पर, संभव पक्ष का अर्थ मैं बता रही हूँ, यानी पॉसिबिलिटी है ना, देव गति में बंधे हुए परमाणु यहाँ हो सकते हैं तो वो है ऐसा स्वीकार करेंगे तो एक परमाणु से लेकर एक एक अधिक परमाणु क्रम से सब स्थिति विशेषों में, सब अनुभागों में और सब पृष्ठियों में अवस्थान संभव है, यह मार्गणा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। क्या नहीं, नहीं नहीं, जो संभव जो है ना उसकी बात है। जब एक ही परमाणु है तो सभी स्थितियों में नहीं होगी, परंतु अनंत हो तक होते ऐसा कहेंगे ना, आप क्या कह रहे हैं? देखो इसी का विशेषण, जिस मार्गणा आदि संबंधी पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है वे तो सभी कृष्टियों में पाए जाते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, सभी में अनंत अनंत पाए जाते, अथवा सभी कृष्टियों में अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप जो अनुभाग पाया जाता है उन सब में सदृश धन स्वरूप अनुभाग वाले अभजनीय जो रह गया। क्या कहते, अथवा सभी कृष्टियों में अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप जो अनुभाग पाया जाता है उन सब में सदृश धन स्वरूप अनुभाग वाले अभजनीय कर्म प्रदेश नियम से पाए जाते हैं, ऐसा इस सूत्र का अर्थ करना चाहिए। ये अभजनीय की बात है, नियम रूप की बात है। साथ ही जो पूर्वबद्ध कर्म प्रदेश भजनीय रूप से इस शपक से पाए जाते हैं उनका संभव पक्ष में, संभव है वो हो सकता है वाले पक्ष में कम से कम एक परमाणु और अधिक से अधिक अनंत परमाणु इस क्षपक के पाए जाते हैं, इसलिए उनका भी सब स्थितियों सब अनुभागों और सब पुष्टियों में होने का इसी विधि से विचार कर लेना चाहिए।
ये भजनीय वाला सभी स्थिति में सभी अनुभाग में
हो सकता है,
हो सकता है, और भजनीय तो एक तो होगा ही,
भजनीय में भी दो पक्ष हैं संभव और असंभव। भजनीय में क्या हो सकता है, यदि होता है तो कितने होते, तो एक हो गए, दो हो गए, अधिक हो गए,
अनंत
भी हो। अभी और बताएंगे इसका। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं विभाषा। अब इस दूसरी भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं, यह सूत्र सुगम है। जानी अवज्जानी पूर्वबद्धानी तानी नियमा सव्यसु ठीसेसु नियमा सव्वासु किट्टीसु। जो पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है, यही बात फिर दोबारा बोल रहे हैं, यानी नियम से है, वे स्थिति के सब भेदों में और सब कृष्टियों में नियम से पाए जाते हैं। यह सूत्र गतार्थ है, इसका अर्थ पहले ऑलरेडी आ चुका है। इस प्रकार छठी मूल गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा तीन मूल गाथाओं का अवलंबन लेकर गति आदि मार्गणाओं में पूर्वबद्ध कर्मों की इस क्षपक के भजनीय और अभजनीय भाव की गवेषणा करके अब सातवीं मूल गाथा का अवतार करते हुए इस सूत्र को कहते हैं, है के समझ अभजीय भजनीय बारंबार उसमें गलत हो रही है। गाथा पढ़ेंगे भी है सब ऊपर का नंबर बराबर है ना अरविंद में देख रहे हैं 41 और 194 पहले तो हम 138 गलत था नीचे ओ नीचे गलत लिखा था पेज नंबर 136 पर ऊपर तो गाथा को 138 नंबर दिया है नीचे 139 दिया वो गलत है तो 137 पृष्ठ पर है अब यहाँ नंबर है 141 नीचे है क्या था कहते एत्तो सप्तमीये मूल गाहाय समुक्कीर्तना आगे सातवीं मूल गाथा की समुक्कीर्तना करते हैं यथावसर प्राप्त सातवीं मूल गाथा के अर्थ की विभाषा करने के लिए यहाँ से आगे उसकी समुत्कीर्तना करनी चाहिए यह उक्त कथन का तात्पर्य है अब और कोई नया विषय आएगा देखेंगे एक समय पबद्धा पुनः अच्युता केति गा कहिं तिदिसु पबद्धा अच्युता तिदिसु कहिं केति आहुंती उसका अर्थ है एक समय में बांधे गए कितने कर्म प्रदेश स्थिति के कितने भेदों में असंक्षुब्ध रहते हैं तथा कितने भवबद्ध कर्म प्रदेश स्थिति के कितने भेदों में असंक्षुब्ध रहते हैं ये नया और प्रश्न पूछा हुँ? ये नहीं संचित किया हो नहीं नहीं देखो एक समय में बंधा है एक समय में कितने बनते हैं अनंत बनते जब बंधे थे तो कितने जब जिस समय बंध हुआ था तो कितने में विभाजित हुआ सभी से अभी क्या वो सभी में है क्या कैसा है ये पूछ रहे एक समय में जो लॉर्ड बंधा था वो किस प्रकार से है अभी ये पूछ रहे अब देखेंगे उसका अर्थ बताएंगे अंतरकरण क्रिया के संपन्न करने के प्रथम समय से लेकर ये अंतरकरण क्रिया होती है ना क्या होता है बीच में अंतर किया जाता है तो कहते संपन्न होना यानी समाप्त हो गए यानी वो अंतर करने का कार्य हो गया प्रथम समय से लेकर उपरिम समय में विद्यमान इस क्षपक के कितने समय प्रबद्ध तथा कितने भवबद्ध कर्म प्रदेश कितने भवों में बांधे हुए कितने समय प्रबद्ध यानी कितने समयों में बंधा हुआ है और कितने भवों में बंधा है उदय में असंक्षुब्ध रूप से संभव है पहले उदय में पूछ रहे तथा संभव उनका संभव उनका यानी वहां होने वाले जो पाए जाते हैं उनका कितने स्थिति भेदों में और अनुभाग भेदों में अवस्थान होता है इस प्रकार इस तरह के अर्थ विशेष का निर्णय करने के लिए यह सातवीं मूल गाथा उत्तीर्ण हुई है वह जैसे एक चाहिए ना एम हुआ एक समय पबद्धा पुनः वो करना उसका एक समय पबद्धा पुनः ऐसा कहने पर एक समय में जितने कर्म प्रदेश बंध को प्राप्त होते हैं इनके समूह का नाम एक समय प्रबद्ध है परंतु उसके समय भेद से संपन्न होने पर बहुत संभव है इसलिए उनका एक समय पबद्धा इस प्रकार बहुवचन रूप से निर्देश किया है क्योंकि ये समय प्रबद्ध हर समय समय प्रबद्ध हर समय का समय प्रबद्ध है इसलिए समय प्रबद्धा इन्हें अनेक वचन बताए इन्हें अनेक समय प्रबद्ध है वहां पर, अथवा एक एक समय प्रबद्ध। इस प्रकार रीपसा निर्देश के अवलंबन द्वारा यह बहुवचन निर्देश घटित हो जाता है। एक यानी प्रत्येक समय प्रबद्ध, एक एक यानी अनेक है ना, तो एक एक ऐसा काम। अब इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे नो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा।